सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार से 3 दिनों की यात्रा पर जोहानिसबर्ग में हैं। इस G20 शिखर सम्मेलन के क्या नतीजे रहे, हम इसे कैसे समझें, सुर्खियों में इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
धन्यवाद।
शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सवाल हमारे ये है कि जोहानिसबर्ग में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं?
देखिए, प्रारंभ में हम ये कह सकते हैं कि ये जो शिखर सम्मेलन है, इसमें एक तो कई बिंदुओं पर भारत की बात का समर्थन दिया गया, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में चीजें बताई गई थी, जो पॉइंट्स थे या जिन पे भारत ग्लोबल साउथ के दक्षिण के उस जिस पे भारत काम कर रहा है, उस पे कई चीजें उसमें रखी गई। एक वातावरण पर्यावरण में बदलाव, दूसरा भारत ने भी कहा था कि छोटे देशों को अधिक सहायता देनी चाहिए और पर्यावरण के बदलाव से लड़ने के लिए जो आवश्यक पूंजी होती है, क्योंकि बड़े देश जो हैं उनके पास तो तकनीक ही है, लेकिन उस तकनीक को वो कहते हैं कि छोटे देश अगर लेना चाहते हैं तो वो कहते हैं आप खरीदिए हमसे, वो छोटे देशों के लिए संभव नहीं है। तो उसके लिए भी एक फंड बनाया गया था, उसके लिए भी भारत ने वो किया। इसके साथ साथ देखिए, सबसे पहली बात तो भारत ने ये कहा, जब हमारा मोटो था वसुधैव कुटुंबकम
जी,
उसी का करीब करीब रूपांतर जो है साउथ अफ्रीका में एक शब्द कहा जाता है उबुंतु। उबुंतु का मतलब यह है कि मैं हूँ, मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग सौहार्द की भावना जो है, वही हम वसुधैव कुटुंबकम में कहते रहे हैं। हमने ये कहा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ हमें मोर्चा खोलना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि ग्लोबल साउथ में छोटे देशों को कर्जा देने में हमें दूसरे नियम बनाने चाहिए, कुछ नियमों में ढील देनी चाहिए। हमने ये भी कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनके लिए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नया पैरामीटर, एक नई सीमा।
और ये सब जितेंद्र जी, ये सब बहुत अहम पहलू हैं, और खास तौर पे अगर आप ये देखें कि जब 2023 में 2 साल पहले भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की और जो डिक्लेरेशन था, तो उसके भारत के 9 प्रमुख मुद्दे जो कि बताए थे, आज उसमें स्वीकार कर लिए गए हैं जोहानिसबर्ग में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ। और विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध विभाग के सचिव सुधाकर दलेला ने भारत के लिए जोहानिसबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का क्या महत्व रहा, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको रेखांकित किया है। आइए पहले वो सुन लेते हैं।
Prime Minister proposed few actionable।
प्रधानमंत्री ने G20 के लिए कुछ कदम उठाने के लिए सुझाव दिए हैं। इनमें पहला G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, दूसरा G20 अफ्रीकी कौशल गुणक कार्यक्रम बनाना, तीसरा G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल का निर्माण, चौथा G20 सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप बनाना, पांचवा G20 महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र पहल का निर्माण, और आखिरी मादक पदार्थ और आतंकी गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 इनिशिएटिव बनाना शामिल है।
आप जो बता रहे थे वही चीज, आप खनिज को लेकर जो बात कही गई है, ये कितना महत्वपूर्ण आप समझ रहे हैं और किस तरीके से पूरी दुनिया इस पर काम कर सकती है?
देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता आज के जमाने में, जब इन खनिजों का महत्व इस पे होता है कि आप सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, आप कारें बना रहे हैं, बसें बना रहे हैं, आप रॉकेट साइंस में, आप प्रक्षेपास्त्र बना रहे हैं, सब में ये खनिज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आज अभी स्थिति इनका महत्व देखिए, इसी से हो जाता है कि चीन के ऊपर ट्रंप ने 150% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, और चीन ने जब एक बार घोषणा कर दी कि हम ये जो रेयर मैग्नेट्स हैं, रेयर अर्थ के, उनका एक्सपोर्ट, उनका निर्यात US को रोक रहे हैं, तो फूड इंडस्ट्री बंद हो गई। फिर ट्रंप को ये कहना पड़ा कि अच्छा, हम 150% नहीं लगाएंगे, निर्यात करते रहिए। चीन का इसमें एक अधिकार है, सबसे ज्यादा इसका उत्पादन चीन करता है, तो अब करीब 68-69%। तो अब अगर इस चीज में भारत का ये कहना था कि इसके लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि सप्लाई चेन निर्बाध रूप से काम करती रहे, जिन देशों को, जिन इंडस्ट्रीज को अपने विकास के लिए इनके इस्तेमाल करने की आवश्यकता है उनको निर्बाध रूप से ये चीजें मिलते रहे, इस पे कोई एकाधिकार न हो या इस पे कोई अनावश्यक रूप से टैरिफ न लगाए जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज है।
एक तरीके से कहे जितेन जी, भारत अपना पक्ष जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में बहुत ही प्रभावी तरीके से रखा है, और ये कहते हैं कि जब भारत बोलता है पूरी दुनिया सुन रही होती है कि भारत क्या बोल रहा है, और पिछली बार भी हमने देखा कि किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराने के लिए भारत ने पहल की और एक बेहद सफल पहल रही थी। आपसे हमारा सवाल यह है कि कई देशों के साथ अगर हम देखें तो बाइलेटरल द्विपक्षीय समझौते भी हुए हैं, इन पर आप क्या प्रकाश डालेंगे?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसके साइडलाइंस पे भारत ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ ट्राइलेटरल, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया ट्राइलेटरल इन्फॉर्मेशन
जी
पार्टनरशिप की है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों देश मिल करके अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके फायदों पर, एक साथ उसके फायदों का कैसा इस्तेमाल किया जाए, एक साथ काम करेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें यह है कि सप्लाई चेन को भी निर्बाध रूप से जारी रखने की बात हुई है। ये भी बात हुई है कि एनर्जी टेक्नोलॉजी उसको एक दूसरे के साथ साझा करेंगे ताकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादित हो, उसमें खर्चे कम हों। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि AI के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में तीनों देश एक दूसरे से सहयोग करेंगे, और ये सब चीज क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में कहा गया, क्योंकि देखिए चीन के बाद दो देशों में और क्रिटिकल मिनरल्स हैं उतने हैं जितने भारत में नहीं हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हैं। इसलिए कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ ये समझौता किया गया। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के भी सदस्य हैं, और 2007 तक हमें 123 एग्रीमेंट न्यूक्लियर फ्यूल हमें नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब हमें ये मिल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों एक बहुत बड़े न्यूक्लियर फ्यूल सप्लायर हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, हमने तीन ऐसे देशों ने मिल करके ये समझौता किया है। इसके साथ ही देखिए, हम प्रधानमंत्री साइडलाइंस में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से मिले,
ब्राजील जहां आप लंबे समय तक रहे हैं, ब्राजील के साथ भी वहां के हेड ऑफ स्टेट से प्रधानमंत्री मोदी जी की अलग से बातचीत हुई, क्या कहेंगे आप?
देखिए, ब्राजील के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे रहे हैं शुरू से, और हम अगर ब्राजील के साथ हम सहयोग किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं वो असीम है, उसकी सीमाएं अनंत है। हम बायोफ्यूल में कर सकते हैं ब्राजील के साथ सहयोग, हम ब्राजील के साथ इथेनॉल में सहयोग कर सकते हैं, ब्राजील के साथ पेपर प्रोडक्शन में कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे आपके श्रोताओं के लिए बता दूं कि ब्राजील के पास इतने ज्यादा लौह अयस्क हैं, विश्व में जितना लोहे की खपत हो रही है उस हिसाब से ब्राजील सारे विश्व को 500 साल तक सप्लाई कर सकता है, और 83 अरब बैरल संकेत मिले हैं कितने का तेल उनके पास है, जो उनको दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बना देगा। तो ये कई चीजें हैं जिसमें हम दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं।
और जितेन जी, इसके अलावा IBSA यानी इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इसके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने IBSA की भी साइडलाइंस में बैठक की और महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, तो आप कैसे देखते हैं इसे कि इंडिया ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जो है कैसे मिलकर ग्लोबल साउथ की जो धारणा है उसको और आगे बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं?
देखिए, IBSA जो है वो आज का नहीं, वो ऑलमोस्ट ब्रिक्स के समय का है, ब्रिक्स से पहले का है, जिसमें इन तीनों देशों ने मिलकर के समझौते किए। भारत जापान और चीन के बाद एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति,
बिल्कुल,
और ये तीनों ही ग्लोबल साउथ में हैं, ये तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज माने जाते हैं, और इन तीनों के पास आर्थिक संसाधन काफी हैं, खासतौर से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत हैं, उनको दोहन की आवश्यकता है, और उनका सीमित मात्रा में दोहन कोऑर्डिनेटेड तरीके से करना जरूरी। ये तीनों देश इस मामले में बहुत आगे जा सकते हैं, ये तीनों देश इस मामले में बड़ा सहयोग कर सकते हैं। हालांकि IBSA पर पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि ज्यादा जोर जो है ब्रिक्स पर है, लेकिन फिर भी IBSA तीनों देशों में अगर सहमति बनती है तो वो आगे ब्रिक्स में सहमति के रूप में परिणत हो सकती है।
कुल मिलाकर जितेन जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, इसके 5 महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु जो कि पूरी दुनिया को आने वाले समय में प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भारत की जो धारणा है वसुधैव कुटुम्बकम की कि धरती एक है और एक ही फ्यूचर है सबका, एक ही भविष्य है, इसके हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय में जो भविष्य है उसमें दुनिया कहाँ जाएगी, कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कैसे आर्थिक विकास होगा, कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे पर्यावरण से हम निपटेंगे। इसमें अगर आपसे महत्वपूर्ण कुछ की टेक अवेज जिसे हम कह सकते हैं वो बताने के कहा जाए, क्या बताएंगे आप?
देखिए, इस G20 के शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने ये बता दिया है कि अगर देशों में बहुमत किसी चीज के पक्ष में हो तो उसको कार्यान्वित करने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए बता दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका बहिष्कार किया, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा था, उनका ये मानना है कि क्लाइमेट प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं है, पर्यावरण के साथ हमें कोई समस्या नहीं है और ये जबरदस्ती उछाला जा रहा है, और इसके बावजूद ट्रंप ने उसका बायकॉट किया, अमेरिका ने बायकॉट किया, अमेरिका ने इसकी निंदा भी की, और इसके बावजूद कि आम तौर पे ये होता रहा है पिछले शिखर सम्मेलनों में कि सर्वसम्मति से लीडर्स डिक्लेरेशन पास किए जाते रहे, इस बार ये घोषणा पत्र अमेरिका और अर्जेंटीना के दस्तखत के बिना हुआ, जिससे ट्रंप को भी बड़ी परेशानी हुई। तो एक चीज तो ये बता दिया इसने कि बड़ी शक्तियों का कोई मतलब नहीं होता अगर बहुमत उनके खिलाफ है। दूसरा ये बता दिया कि जो छोटे देश हैं या जो विकासशील देश हैं वो एक साथ ग्लोबल साउथ बैनर के तले वो मिल करके अगर काम करेंगे तो उनके विकास का, आर्थिक विकास का भी दरवाजा खुलेगा। उनके जैसे ऋण की देनदारी के लिए, इसमें कहा गया ऋण की देनदारी के लिए शर्तें ठीक रहेंगी, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कहा गया, ये भी कहा गया कि टेररिज्म चाहे वो जिस रूप में हो
जी,
उसका विरोध किया जाना चाहिए। ये चार पांच ऐसी चीजें हैं जो उभर के सामने आती हैं जो कि इस सम्मेलन की खासियत रही।
एक और आपसे चलते चलते जितेन कुमार त्रिपाठी जी, आप पूर्व राजदूत हैं, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि इस G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े जोर शोर से इसको प्रस्तावित किया है, आप क्या देखते हैं कि कैसे ये संभव हो पाएगा और इसके गोल कब तक हम पहुंच पाएंगे?
देखिए, इस विषय में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं आपके श्रोताओं को ये बता दूं कि ये एक बड़ी छलांग है जो हम कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है। आईटेक स्कीम के अंतर्गत और ICCR के अंतर्गत हम अफ्रीकी देशों को काफी स्कॉलरशिप देते हैं, उनके जो टेक्नोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके करीब 100 से ज्यादा संस्थानों में उनको एक 3 हफ्ते से 3 साल तक प्रशिक्षण दिया जाता है मुफ्त, और ये चीज पिछले 50 साल से चल रही है। अभी जो बढ़ाई गई, पिछले कुछ साल पहले जो बढ़ाई गई IAF समिट के दौरान, उसमें ये था कि इंडिया अफ्रीका फ्रेंडशिप समिट, भारत अफ्रीका को, अफ्रीका के सभी देशों को वो 3 सबसे बड़ी चीजें तो दे ही रहा था। एक ई गवर्नेंस, हर अफ्रीकी राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष के यहाँ एक ऐसी टेलीफोन लाइन लगा दी गई भारत सरकार द्वारा जो उन्हें एक दूसरे से हॉटलाइन पे कनेक्ट करती। दूसरा ई हेल्थ, भारत ने अफ्रीका के सभी देशों में ऐसे सिस्टम, ऐसी मशीनें लगा दी हैं और ट्रेन किया है कि वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो इन रियल टाइम वो यहाँ के डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर वहाँ ऑपरेशन कर रहा हो, कोई दिक्कत हो तो यहाँ के डॉक्टर से वो बातचीत कर सकता। और तीसरा ई एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, हर अफ्रीकी देश में हमने कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए, ट्रेनिंग प्रोवाइड किए यूनिवर्सिटीज में, और उनको ये बताया है कि कैसे आप करिए। अब प्रधानमंत्री की इस घोषणा से एक लंबी छलांग आएगी और भारत और अफ्रीका का
और बेहतर संबंध बनेगा और साथ में आर्थिक विकास की भी अगर बात करें तो दोनों देशों के बहुत मजबूत होंगे। फिलहाल के लिए जितेन कुमार त्रिपाठी जी, पूर्व राजदूत, आपने सुर्खियों में G20 शिखर सम्मेलन जो जोहानिसबर्ग में हुआ उस पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे G20 शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सुर्खियों में